समवेत गौर भक्त वृंद की श्री लोचनदास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमम् Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudirae Nasta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Ruttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतपुत्राय भूतकृत् तस्माइदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतपुत्राय भूतकृत् तस्माइदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतपुत्राय भूतकृत् अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के अनुवाद इस प्रकार से है। तत्पश्चात पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवतम नामक उपवेद पुराण कहे सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। तात्पर्य, यद्यपि चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया गया था, किंतु वह 10 लक्षणों से संपन्न था, जिनकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। 4 श्लोकों में पहले यह बताया गया है कि सृष्टि के पूर्व भगवान का अस्तित्व था, अतः श्रीमद् भागवत का शुभारंभ वेदांत सूक्ति जन्मादश इतिहास से होता है। यद्यपि जन्मादश शुभारंभ है, तो भी जिन 4 श्लोकों में ये वर्णित हैं और जिनमें कहा गया है कि भगवान सृष्टि से लेकर भगवत धाम तक प्रत्येक वस्तु के मूल हैं, उसमें 10 लक्षणों की व्याख्या हुई है। मनुष्य को गलत व्याख्या करके ये भूल नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने केवल 4 श्लोक कहे थे, अतः शेष 17,994 श्लोक व्यर्थ है। इन 10 लक्षणों को समुचित व्याख्या के लिए, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, न जाने कितने श्लोकों की आवश्यकता होगी। ब्रह्मा ने नारद को पहले यह भी सलाह दी थी कि उन्होंने जो उपदेश दिया है उसका वे विस्तार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को संक्षेप में इसका उपदेश दिया, किंतु शिष्य रूप गोस्वामी ने इसको अत्यधिक विस्तार दिया। इसके बाद इसी विषय को जीव गोस्वामी ने और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विस्तार दिया। हम इन्हीं अधिकारियों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अतः श्रीमद् भागवत न तो कोई साधारण उपन्यास है, न ही संसारी साहित्य। इसकी शक्ति अपार है, इसे अपनी बुद्धि के अनुसार चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है। इससे भागवत का अंत नहीं होता। श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है, अतः इसे चाहे 4 श्लोकों में कहा जाए या 4 अरब श्लोकों में, यह एक जैसा है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान अणु से भी सूक्ष्म और अनंत आकाश से भी विस्तृत है, श्रीमद् भागवत की शक्ति ऐसी ही है। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमः। नमस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को भागवतम की जो महिमा है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो हम जनरली देखते हैं कि सारे ग्रंथों में अलग अलग जो शास्त्र हैं उनकी महिमा को स्थापित किया गया है, लेकिन जितने भी ग्रंथ हैं, इतिहास है, वेद है, उपनिषद है, श्रुति स्मृति पंचरात्र तंत्र शास्त्र, इन सब में श्रीमद् भागवतम को क्या किया है, बहुत ग्लोरीफाई किया है। तो वास्तव में जैसे तीन प्रकार के शास्त्र हैं, एक है श्रुति शास्त्र। श्रुति शास्त्र का मतलब ही है कि जिसको सुनकर सीखा जाता है। श्रुति शास्त्र क्या है, वेद है, उपनिषद है, हाँ ये सब श्रुति शास्त्र है। तो ये श्रुति शास्त्र हमें सिखाता है कि क्या करना चाहिए आपको, लेकिन कैसे करना चाहिए वो इतना निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप से सिखाता नहीं है। तो उसके बाद है स्मृति शास्त्र। स्मृति जैसे हम कहते मेरे स्मृति में वो घटना है जो वहां घटित हुई थी। तो ये पुराण एग्जैक्टली क्या है, ये स्मृति शास्त्र है, ये हिस्ट्री के बुक्स है। स्कूलों में हिस्ट्री बुक्स होते हैं, तो यहां वैदिक ग्रंथों में ये पुराण हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल। लेकिन ये हिस्ट्री कोई सीक्वेंस में नहीं है कि इसके बाद ये हुआ उसके बाद ये, सीक्वेंस कुछ ऊपर नीचे है, लेकिन सारा हिस्ट्री है जो घटित हुई थी सृष्टि से लेकर अभी तक। अभी तक भागवत में वर्णन आता है पांडवों के बाद कितने राजा हुए, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य तक वर्णन आता है। तो इस प्रकार से ये जो पुराण, कई प्रकार के पुराण है। एक तो 18 तो प्रमुख पुराण है, फिर और 18 उप पुराण है, फिर और स्थल पुराण है। ये इस प्रकार के अलग अलग पुराण है। स्थल पुराण का मतलब है कि आप कई स्थानों में आप भ्रमण करते हो, तीर्थों में जाते हो, तो उन स्थानों में क्या क्या घटना घटित हुई थी उस तीर्थ स्थल के बारे में, तो उसका वर्णन स्थल पुराणों में हमें प्राप्त होता है। अलग अलग हम यात्रा में जाते हैं तो वहां की घटनाएं स्थल पुराणों में है। तो इस प्रकार से ये पुराण हमें सिखाते हैं कि कैसे करना चाहिए। वेद तो कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अरे उठो जागो जिज्ञासा करो, लेकिन कैसे जिज्ञासा करनी चाहिए वो कौन सिखाता है, पुराण सिखाते हैं, क्योंकि वहां आचरण दिखाया गया है। वहां एक एक गुरु है और एक शिष्य भी है, और एक भगवान है और एक भक्त भी है। भगवान की किस प्रकार से सेवा की जाए, शिष्य ने ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गुरु को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या विधि है, उसका वर्णन इन पुराणों में होता है, एग्जाम्पल के साथ प्रस्तुत किया गया है। फिर न्याय शास्त्र है। कुछ लोग बड़े टेढ़े बुद्धि के होते हैं, वो ऐसा क्यों, आए ऐसा क्यों है, तो वो न्याय शास्त्र में ये है क्यों, क्यों का उत्तर न्याय शास्त्र देते। तो ये उपनिषद है, 108 उपनिषदों में उसका नाम ही है केन उपनिषद। केन का मतलब है क्यों, क्वेश्चन। तो उसमें केवल प्रश्न ही प्रश्न है और उनके उत्तरों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार से निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखात अमृत द्रव सम्मितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अरे रसिक जन, अरे रसिक भक्त, पियो ना श्रीमद् भागवतम को सुबह सुबह। हाँ उठकर पियो, अभी ठंड में तो हम हर्बल टी पीना चाहते हैं। हाँ लेकिन वास्तव में जो वैदिक कल्चर ये था, सुबह और शाम को हाँ जो गांव के लोग हैं सुबह उठ के भागवतम को पीते थे और शाम को अपने खेत आदि के कार्य करने के उपरांत अपने परिवार को लेकर हाँ बैठकर श्रवण करते थे। जैसे आज भी आप ओडिशा के गांव में जाते हो, अभी पता नहीं है कि नहीं, लेकिन कुछ साल पहले हम गए थे तो वहां एक बहुत रिमोट विलेज में, देखो वहां क्या है, एक कल्चर है, वहां हर गांव में एक छोटा सा झोपड़ी या टेम्पल है जिसको भागवत तुंगी कहा जाता है, जहां भागवतम रखी है और आपको बस अपने आप को लेके आना है, श्रीमद भागवतम को वहां हर रोज श्रवण करना है। तो इस प्रकार से वैदिक शास्त्र ये एक बड़ा ट्री है, शास्त्रों को कहा गया है एक प्रकार से कल्प वृक्ष है। अभी जैसे कोई आम का पेड़ है तो आम के पेड़ में भी जूस है कि नहीं, रस है, आप थोड़ी उसके टहनी को काट के रस मिलेगा, रस कहां छुपा हुआ है, फ्रूट, तो फ्रूट आपको मिलेगा वो भी पका हुआ, तो आप रस को पी सकते हो। तो उसी प्रकार से सारे जो वेद है, शास्त्र है, उपनिषद आदि है, इनका जो पका पकाया फल वो क्या है, श्रीमद् भागवतम। इसलिए जिस व्यक्ति ने भागवतम से प्रेम किया है ना, वो व्यक्ति इस संसार में सर्वोच्च माना जाता है, उससे परे कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए पूरी भागवतम बोलने के बाद शुकदेव गोस्वामी ने कहा, वे सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, तत्र सामृत तृप्तश नान्यत्र शाद्रसि क्वचित। सारे वेदों का ये क्या है, सार है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् का मतलब होता है सुंदर, है ना, सुंदर है भागवतम, क्या है, सुंदर है। सुंदर क्यों है भागवतम, क्योंकि ये साक्षात कृष्ण है। कृष्ण को कहा जाता है आत्म पर्यंत कर्षति इति कृष्ण, हाँ कृष्ण ऐसी पर्सनालिटी है कि वो अपने आप से लेकर ये जगत के सबके हृदय को हरण कर लेते हैं, आत्म पर्यंत स्वयं से लेकर सारे जड़ जगत के जीवों को। तत्र सामृत तृप्तश नान्यत्र शाद्रति क्वचित, जो व्यक्ति भागवतम के रस से तृप्त हो जाएगा वो उस व्यक्ति के लिए संसारिक रस निरस महसूस होगा, ये संसार का जो रस है वह उसको आकर्षित नहीं करेगा, इस रस ही जगत के रस को ढूंढेगा नहीं। अभी हम सब लोग कुछ ना कुछ रस को ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में, नहीं, क्योंकि हमारे पास निरस है ना? जो भी भौतिक संबंध है वो किस लिए है, कोई व्यक्ति रिलेशन रखता है, मेंटेन करता है, मेंटेन करने के लिए कितना स्ट्रगल करना होता है, क्यों, क्योंकि ना उसमें जूस है, एक विशेष प्रकार का रस है। कोई व्यक्ति दुकान में दिन रात बैठा रहता है ना, काउंटर पर नोट गिनते रहते, उसमें भी क्या है, जूस है। तो हर जूस रस मिले बिना इस संसार में कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति कार्य कर रहा है केवल रस प्राप्ति के लिए, और वो रस एक विशेष प्रकार का आनंद है। प्रभुपाद कहते थे कि एक व्यक्ति अपने परिवार को गांव में छोड़ देता है और धन कमाने के लिए शहर में रहता है महीने साल आदि, और अपने जो नीड्स है उनको कम से कम रखता है, लेकिन हमेशा याद करता है मेरी पत्नी गांव में है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, और मैं ये धन संभाल कर उनको भेजूंगा, मनी ऑर्डर करूंगा और वो पढ़ेगा, पत्नी को आनंद होगा। तो ये सोचकर उस व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का रस मिलता है, और वो रस ही इस संसार में हमें एक्टिव, जैसे होता है ना, जैसे एक्टिव प्रिंसिपल है, हम क्यों इतने एक्टिव है, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, रस मिल रहा है। भौतिक कार्य में भी हर एक व्यक्ति चाहे छोटे से लेकर बड़े और बड़े से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक, हर एक व्यक्ति रस के पीछे भाग रहा है, रस चाहता है। लेकिन इस संसारिक जगत का जो रस है वो क्या है, क्योंकि ये जगत में मोस्टली जो रस है वो रज और तमोगुण से उत्पन्न है, रज और तमोगुण से संबंधित है, और रज और तमोगुण के रस का शुरुआत में तो बड़ा मीठा लगता है। पतंग का जब फायर को देखता है
तो उसको मिलने की आकांक्षा होती है, उस रूप से आकर्षित होता है और उसको पता नहीं फायर के नजदीक जाऊंगा तो मेरा क्या होने वाला है, जल जाने वाला हूं मैं फायर। तो लेकिन उसको आकर्षण लगता है उस स्वरूप। तो जो पतंगा है वो जाता है और जाकर वो रोग उसको खा डालता है, एक प्रकार से विनाश हो जाता है। तो वैसे ही ये जगत का जो भौतिक रस आदि है वो कष्टमय है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ये ही संस्पर्श जा होगा दुख एनते अत्यंतवंत कौंतेय नतेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये जो रस है भौतिक इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त हमें, वो शुरुआत में तो बड़ा आनंद देता है, मीठा लगता है, लेकिन पता नहीं कि धीरे धीरे वो कड़वाहट में बदल जाएगा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है या बुद्धिमान भक्त है उसको भागवतम में अपनी रुचि बढ़ानी चाहिए। और भागवतम में रुचि कैसे आएगी, तो महाप्रभु या स्वरूप दामोदर ने कहा जाओ भागवत पढ़ो भागवत स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। भागवतम को आस्वादन करना है, भागवतम को सीखना है, समझना है, तो भक्त भागवत के पास जाना होगा। दुई भागवत दिया, दो भागवत क्या देते हैं, भक्ति रस पात्र। ये दो भागवत भक्ति के रस से भरे पड़े हैं। एक भागवत कौन है, ग्रंथ भागवत, और दूसरा भागवत कौन है, भक्त भागवत। लेकिन हम अपने जीवन में भक्त भागवत को अवॉइड करेंगे तो ग्रंथ भागवत की कृपा कदापि मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ग्रंथ भागवतम हमेशा लॉक्ड है, लॉक है। अब 10 बार पढ़ो भागवतम तो भी आपके हृदय में स्थित नहीं होगा, लेकिन जब तक आप किसके शेल्टर में लोगे, भक्त भागवत, क्योंकि भक्त भागवत के हृदय में ग्रंथ भागवत की चाबी है और वो चाबी के द्वारा वो ओपन करते हैं। इसलिए तो प्रभुपाद से पहले कितने लोग आए, कितने लोगों ने प्रयास किया भागवतम या भगवत गीता को प्रस्तुत करने का, क्योंकि वो भक्त भागवत नहीं थे, प्रभुपाद के पास वो की था, शरणागति का जो की है, और उसके द्वारा श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को खोल दिया उन्होंने। ऐसा खोला कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक व्यक्ति समझ जाता है। बाकी संप्रदाय में जाओ तो वहां का जो मठाधीश है, वहां का जो गुरु है, वही एक एक में प्रवचन देता है, लेकिन यहाँ हमारा बच्चा जन्म लेता है कि नहीं कृष्ण भक्ति में, वो बोलना शुरू करता है, दहाड़ता है, सिंह की तरह गर्जना करता है, बड़े बड़े प्रवचन देता है। तो ये विशेषता है श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों की। इसलिए स्वरूप दामोदर ने कहा जा भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, वैष्णव के पास जाओ और श्रीमद भागवतम को सीखो, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, और चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण करने मात्र से वास्तव में भागवतम का जो मर्म है, भागवतम का जो सार है, वो हमारे हृदय में जल जाता है, स्थापित हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार हम जैसे मैंने पहले भी कहा था शायद, कृष्णदास महाराज है, उनको उन्होंने शरीर छोड़ा द्वारका, इस्कॉन द्वारका में वो दवा करते थे, लंदन तक पिच करते थे, प्रभुपाद के शिष्य थे। तो वहां उनके पास एक ब्रह्मचारी गया था, गुरु महाराज मुझे ना आजकल बहुत भौतिक इच्छाएं सता रही हैं, भौतिक काम बहुत सता रहा है। तो उन्होंने कहा इजी है, इट्स वेरी इजी, इससे रिलीफ प्राप्त करना, शादी कर लो। क्या कहा उन्होंने, गेट मैरिड। तो उन्होंने कहा गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे हो मुझे, मैं अपनी टेंशन को कम करना चाहता हूं, आप और टेंशन बढ़ा रहे हो मेरे जीवन में। फिर से उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे ना ठीक ठीक उचित उचित रूप से बताइए कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं बहुत विचलित हूं, बहुत टफ मेरा आध्यात्मिक जीवन गुजर रहा है भौतिक आकर्षण के कारण। तो उन्होंने कहा गेट मैरिड, दूसरी बार भी बोला क्या करो, शादी करो। अभी इन्होंने कहा ब्रह्मचारी अभी थोड़े दिन बचे, क्यों बीच में अटक जाना है, हुक हुकिंग क्यों करना है, जस्ट गो अहेड, आगे भागो। तो उन्होंने कहा फिर से गए, कहा गुरुदेव बताइए इन सब भौतिक लस्टी डिजायर से कैसे मैं मुक्त हो जाओ। तो उन्होंने तीसरी बार बोला गेट मैरिड लेकिन किसके साथ, श्रीमद भागवतम के साथ। तो उसके दिमाग के जो स्क्रू है खुल गए, अब समझ में आ गए कि वास्तव में किससे विवाह करना है तो वो भागवतम से, क्योंकि भागवतम जितने भी हमारे संप्रदाय के आचार्यों के जीवन को आप पढ़ोगे या समझोगे तो आपको एक चीज याद रहेगी कि जितने भी हमारे परंपरा के महान आचार्य हैं उनका सबसे अधिक प्रीति किसी ग्रंथ से था तो वो श्रीमद् भागवतम था, या किसी ग्रंथ को सारे आचार्यों ने हाईलाइट किया है तो वो है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। तो भागवतम ये बहुत सुंदर है और हम अपनी सुंदरता को यदि बढ़ाना चाहते हैं, है ना, भौतिक जगत में हम लोग अभी भी नहीं कि हम बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं, साधना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हम अपने शारीरिक आसक्ति से कम हो गई है, नहीं, बल्कि भागवतम कहता है कि जब तक वासुदेव के प्रति प्रीति नहीं होगी न मुंचति देह योगे न तावत, कि तब तक ये देहात्म बुद्धि जाएगी नहीं। जितनी मात्रा में आपकी प्रीति भगवान वासुदेव से होगी उतनी मात्रा में शारीरिक आकर्षण या शारीरिक देहात्म बुद्धि का जो भाव है वो आपका कम होने लगेगा। इसलिए हम सुंदर बनना चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है ना, भक्ति के आने के बाद भी वैसे डिवोटीज बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन सुंदरता वास्तव में हमारी बनाए रखनी है या बढ़ानी है तो जो सुंदर श्रीमद् भागवतम है उसको हमें उसका संग करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद ने अपने जीवन में सबसे अधिक किसी चीज के लिए अपना समय दिया, ये जो 11 साल थे 65 से लेकर 77 तक, 11-12 साल जो थे प्रभुपाद ने इसमें अपना समय, उन्होंने इतना ज्यादा डिसाइपल्स को नहीं दिया इतने टेम्पल्स या प्रीचिंग आदि के लिए, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा उनका जो कैलकुलेशन किया गया है टाइम का, उन्होंने सबसे अधिक टाइम अपना श्रीमद् भागवतम के लिए दिया है। भागवतम का अनुवाद करने में, भागवतम की कथाएं लेक्चर्स देने के लिए गीता से अधिक लेक्चर्स भागवतम के दिए हैं प्रभुपाद ने। और दिन रात श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद सो जाते थे, 9 बजे वगैरह उठ जाते थे, 2 घंटे के बाद 12 बजे उठ जाते थे, 12 से कंटिन्यू सुबह 5-6 बजे तक या 4 बजे तक अनुवाद करते रहते थे कंटिन्यूअसली, 11 बजे या तो नाइट नो पूरा उसका अनुवाद में लगे रहते थे श्रीमद् भागवतम के दिन में भी। तो इस प्रकार से इवन इतना ही नहीं कि श्री प्रभुपाद बल्कि जीव गोस्वामी ने तो भागवतम पर इतने श्लोका लिखे जितने श्लोका भागवतम में नहीं है। जीव गोस्वामी ऐसे ऐसे आचार्य हैं, वो चलते थे तो उनके दिमाग में तुरंत वो कई हजार श्लोकों की रचना, व्यास देव से भी ज्यादा श्लोकों की रचना की है जीव गोस्वामी ने। तो वो जब चलते थे तो अपने मन में ही कई श्लोकों को एक के बाद नया नया श्लोक का रचना कर देते थे, स्टोर कर देते थे। अभी तो हमें हार्ड डिस्क चाहिए स्टोर करने के लिए या लिखना चाहिए, भूल जाते हैं। आप सोचो भक्ति जीव गोस्वामी श्लोकों की रचना कर रहे, स्टोर कर रहे सिक्वेंस में 100 श्लोक 500 श्लोक, और जब टाइम मिलता था 2-3 दिन के बाद तब जाके लिखते थे सारे श्लोक। ऐसे ऐसे आचार्य है, हम एक श्लोक हमें समझ में आने के लिए दिक्कत है, याद रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल, किताब खोलना पहले हमारे पास करे चाहिए। हाँ, जैसे कहते ना, जैसे कहते कुछ को होता है मैं पुरुष भाव, मैं बहुत बड़ा ही हूँ, शेर हूँ, घर में शेर हो सकता है, उसको बोलो भागवतम खोल के जरा पढ़ो कंटिन्यूअसली 1 घंटा रोज पढ़ो, नहीं ये नहीं होगा। एक्चुअली इसे पता चलना चाहिए कि मेरी क्या दशा है, मैं अपने आप को शेर समझता हूं लेकिन मैं चूहा हूं, नहीं ऐसी स्थिति है। अपनी स्थिति को हम परखे कभी भी भगवत भक्ति में आने के बाद धीरे धीरे हम भूल जाते कि मैं कौन हूं। जैसे ही डिवोटी अपनी पूर्व स्थिति को भूलता है वैसे ही उसका आध्यात्मिक जीवन से पतन होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे जो हरिदास ठाकुर हैं, इतनी महाप्रभु ने कृपा की उनके ऊपर, महाप्रभु ने अपने सन्निकट रहने के लिए स्थान दिया जगन्नाथपुरी में, फिर भी जब उन्होंने, और नाम के आचार्य आप सोचो, महाप्रभु एक बार उनको प्रश्न पूछने लगे, हरिदास ठाकुर मैं स्नान करके आया हूं समंदर से और मैं आपसे नाम महिमा को सुनना चाहता हूं, तुम बताओ। तो हरिदास ठाकुर कहते, क्यों मेरी मजाक क्यों उड़ा रहे हो, आप नाम का प्रचार करने के लिए आपका अवतार हुआ है, हरे नाम से सारे जगत को आपने आह्लादित कर दिया है और मुझसे सुनना चाहते हो, ये उचित नहीं है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछते हैं और इतने प्रश्न पूछे, कितने प्रकार के अपराध है, कितने प्रकार का नाम है, कई सिद्धांत, और हरिदास ठाकुर ने एक के बाद वर्णन किया, जिस ग्रंथ का नाम हरिनाम चिंतामणि है, भक्तिनाथ ठाकुर ने बंगला में वो ग्रंथ लिखा। तो ऐसे हरिदास ठाकुर इतने बड़े महान भक्त थे, फिर भी उनको जब शरीर त्यागने का समय आया तो उन्होंने, उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु अप्रकट होने वाले हैं, तो उन्होंने महाप्रभु से निवेदन किया कि मुझे सहा नहीं जाएगा, आपको देखे बिना मेरा जो जीवन है वह एक मछली के भांति है, तड़प जाता हूं मैं। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु रोज हरिदास ठाकुर को मिलने जाते थे, रोज प्रसाद लेके जाते थे, और फिर पता चला कि ये जल्दी अपने लीला अप्रकट करने वाले हैं, तो हरिदास ठाकुर रोने लगे। उन्होंने कहा, उनको मैसेज भेजा, महाप्रभु आए हैं, उन्होंने कहा मैं जल्दी अपना शरीर त्यागना चाहता हूं, आपके विरह में मैं जीवन जी नहीं सकता, मेरे लिए असंभव है। तो चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने कहा, हरिदास तुम यहाँ इस जगत को छोड़ के जा रहे हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकता हूं, भगवान को इतना विरह अपने भक्त से। हरिदास ठाकुर कहते, मैं तो एक चींटी के समान हूं, आपके पास तो बड़े बड़े भक्त हैं, कितनी बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, वो आपको बहुत प्रिय है, मेरे जैसा तुच्छ भक्त जो कुछ कर नहीं रहा है, हरिनाम जब करता रहता है, वो एक चींटी के भांति है, इस जगत में कोई चींटी मर जाती है, चींटी के ऊपर पाव पड़ता है तो किसको टेंशन होता है, कौन पूछता है उस चींटी के बारे में, किसको परेशानी आ रही, एक चींटी मर गई, हाँ कोई सोचता है क्या। हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं तो पिपलिका की बात ही हूँ, हाँ बंगला में उसको कहते हैं, तो चींटी हूँ तो जाने दो, मेरे जाने से क्या। लेकिन महाप्रभु कहते, नहीं हरिदास, तुम्हारा जो संग है उसकी तुलना इस जगत में किसी और भक्त के संग से नहीं कर सकते। तो महाप्रभु बहुत उनको ये कर रहे थे, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर का गुण क्या था, अपनी सिचुएशन को नहीं भूले थे। उन्होंने कहा, मैंने तो यवन परिवार में जन्म लिया है, मैं ब्लेच्छ हूं, मैं इतना नेच हूं, और इसी कारण से उनके हृदय में भक्ति स्थित हो गई है। हम आते भगवत भक्ति में कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं और फिर अपनी स्थिति को भूल जाते हैं, हम पहले तो वैसे भूले हुए हैं, जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और दूसरा ये भी भूल गया है, मैं वांछो जीव लोके में भगवान का अंश हूं, और तीसरी चीज, यहां भक्त बनने के लिए आया हूं, भक्तों का संग ये भी भूल गए। तो इसलिए भक्ति में उन्नति असंभव है, हमेशा हमें अपने सिचुएशन को स्मरण करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, मैं कितना नीच पतित, कहां में पड़ा था, गिरा हुआ था, प्रभुपाद और कृष्ण की कृपा से मुझे कहां ऊंचा स्थान दिया है। एक प्रकार से देखा जाए, हम अपने पर्सनल लाइफ में हम कहां कहां के हैं, जीवात्मा है हम, लेकिन कहां प्रभुपाद आदि ने स्थान दिया हमें, बड़े बड़े व्यासासन दिए हैं, अपॉर्चुनिटीज दिए हैं, कितनी सारी चीजें दी हैं। इसलिए कभी कदापि एक भक्त को अपनी स्थिति को नहीं भूलना चाहिए, वो हमेशा दृढ़ रहेगा फिर अपने भगवत भजन में। एक बहुत गरीब व्यक्ति था, उसके पास ना एक गमछा था, गांव में रहता था, सोचो बंगाल से है, हम गमछा तो बंगाल में पहनते ना, ओडिशा और बंगाल में गमछा पूरा बांधते हैं टाइट, और ऊपर तो कुछ वस्त्र नहीं पहनते, वहां है नहीं कपड़े तो वैसे पहनेंगे। तो एक व्यक्ति शहर में आया और उसके पास एक गमछा और ऊपर एक गमछा था, कुछ नहीं था, शहर में आकर झाड़ू मारने का काम कर रहा था, ऐसे कार्य करते करते बड़ा ईमानदारी से कार्य कर रहा था। फिर एक व्यक्ति की नजर पड़ी जो कार से जा रहा था, उसने कहा, अरे तुम इतना अच्छा सेवा करते हो, रोज मैं देखता हूं, बिना किसी रुकावटें बिना किसी कपटता के तुम अपने कार्यों को कर रहे हो, तो उस व्यक्ति को कहा कि आप मेरे मेरे घर या ऑफिस में आप झाड़ू मारने का सेवा करो, तो इसका थोड़ा तरक्की हो गया। तो ऑफिस में देखा बिल्कुल निष्ठा के साथ वो कार्य कर रहा है, फिर धीरे धीरे वो झाड़ू के कार्य के अलावा उसको दूसरा एक कार्य दिया, सिक्योरिटी या फिर थोड़ा सा और बड़ा पद दिया। ऐसे बढ़ोतरी होते होते वो मैनेजर बन गया उस व्यक्ति का, क्योंकि इतना निष्ठावान और स्थिर और सरल हृदय का निष्कपट। तो ये देखकर जो ओनर था वो बहुत ना उससे बहुत लगा हो गया कि ये वास्तव में यूनिक व्यक्ति है, मेरे सारे जिम्मेदारियों को देखने के लिए और जिम्मेदारी को ठीक रखने के लिए। फिर उन्होंने कहा, लेकिन क्या होता था तो जो आसपास के लोग थे ना उनको ईर्ष्या होने लगी, अरे अभी झाड़ू मारता था अभी बड़ा बन गया है भक्त। होता है ना मंदिर में भी या फिर हम अपने भक्तों के बीच में भी सोचते हैं, ये तो हमारे सामने भक्त बना है, मैंने भक्त बनाया था इसको, कभी कभी सोचते हैं, अरे ये अभी इतना बड़ा हो गया फिर हमें ईर्ष्या होने लगती है, अरे मुझे आज्ञा देता है तो ये स्थिति हमारे लिए भी लागू होती है। तो वो व्यक्ति से सारे जो अदर मैनेजर्स हैं वो ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने लगे, उसको कुछ ना कुछ ऐसा करने लगे कि उसकी या तो निंदा हो जाए या जो ओनर है उसके आंखों में गिर जाए, ऐसा कुछ कार्य करते रहते थे सारा ग्रुप मिलाकर। फिर एक दिन देखिए दोपहर के समय ये क्या करता था व्यक्ति, रोज दोपहर के समय में अपने ऑफिस से उसको नजदीक एक रूम दी थी और वहां जाता था दोपहर के समय में, अब जाकर बॉक्स को खोलता था। तभी सब जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा रोज ऑफिस से जाता है, ऑफिस का सामान लेके जाता होगा, कुछ ना कुछ चोरी कर रहा है, हाँ कुछ मूल्यवान चीजें धन आदि उठा के जाके अपने बक्से में रखता होगा। तो इन लोगों ने पीछा करके देखने लगे कि अभी ये पकड़ा गया है, अभी ओनर को लेके आएंगे एक दिन। तो उस मालिक को, मालिक का बिल्कुल ये नहीं था, मालिक सोच नहीं सकता था कि ये ऐसा करेगा, तो लेकिन मालिक ने, मालिक को ये लोग लेके आए और देखने लगे विंडो से कि ये गया है दोपहर के समय और आपने बॉक्स खोल रहा कुछ कर रहा। तो मालिक ने तुरंत नॉक किया, मालिक जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाकी लोग भी तालियां बजाने लगे, घोषणा करने लगे। तो उस व्यक्ति ने उसको बोलने लगे आप चोर हो, आपने बॉक्स में रोज ऑफिस का सामान मंदिर का सामान ले जाते हो। तो फिर जब देखा तो उसमें क्या था, उसका गमछा, बॉक्स में क्या था वही दो गमछा थे जिसके साथ वो आया था और जाकर रोज उनको हाथ लगाता देखता था और अपने सिचुएशन को याद करता था और रो पड़ता था कि कहां मैं क्षुद्र जीव और भगवान कृष्ण ने मुझे कहां बड़ा स्थान दिया है, इस यही महाप्रभु की कृपा है। तो वो कभी नहीं भूला, इसलिए वो अपने सेवा दादे में अपनी साधना में फिक्स था। तो हमारी स्थिति क्या है, थोड़े दिन हमें भगवत भक्ति में होते हैं तो हम अपनी जो स्थिति है उसको भूलने लगते हैं, उसी प्रकार का हमारा आचरण होना चाहिए। हमें अपनी गिरी हुई स्थिति को हमेशा स्मरण रखना चाहिए जिससे फिर हमें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरणा मिली रहती है और हम अपने भजन साधन शास्त्र अध्ययन सेवा आदि में फिक्स हो जाते हैं, कोई हमें वहां से अलग नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से एक भक्त के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ये सब जो शिक्षाएं हैं। तो इस प्रकार से तभी वास्तव में व्यक्ति भगवत भक्ति में गंभीर बना रह सकता है, अन्यथा हम अपने भौतिक रसों को छोड़ेंगे नहीं, भौतिक रसों को पान करने के लिए पागल हो जाएंगे, उन्मत्त हो जाएंगे। तो क्यों हमें भागवतम में रस नहीं आ रहा है, क्यों हमें भक्तों के संग में रस नहीं आ रहा है, क्यों हमें हरि नाम का उच्चारण करने की इच्छा नहीं हो रही है, क्यों हमें सेवा करने की इच्छा नहीं हो रही है, क्यों भगवान के विग्रहों का दर्शन करने के लिए हम लालायित नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे जीवा में कुछ और रस बैठा हुआ है। हम डिवोटीज उदाहरण देते हैं ना, दो फ्रेंड चींटियों का। एक फ्रेंड एक चींटी कहाँ रहती थी, शुगर के पहाड़ में, और एक रहती थी वहां नमक के पहाड़ में, और ये तब महामेलन होता था साल में एक बार। तो एक चींटी वहां से आते थे और एक यहां से शुगर कैंडी, हाँ ये शुगर कैंडी चींटी थी, ये जाते थे, बड़ी खुश थी, हमेशा जेवा को घुमाती रहती थी क्योंकि स्वीट स्वीट खाते थे, स्वीट डिवोटी। और दूसरे कैसे डिवोटी थे, नमकीन डिवोटी। अलग अलग फ्लेवर आपको भक्तों में भी मिलते हैं, कई भक्त बड़े तीखे भक्त होते हैं, है ना, कई बड़े स्वीट डिवोटी है, कुछ तो नमकीन चटपटा भक्त होता है उनको। तो ऐसे था कि दो स्वीट डिवोटीज, हाँ एक तो चींटी यहां से एक वहां से पूरा अपना जर्नी करते हुए आगे, और बहुत समय के बाद हमें भी उन्होंने फोन किया होगा कि मिलते हैं हम दोनों, तो मिली मिली तो उन्होंने तो कहा रहते हो आजकल क्या चल रहा है तुम्हारा, भजन साधन अच्छा चल रहा है कि नहीं, भक्तों का संग करती हो कि नहीं करती। उन्होंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मिठास है भक्तों के संग में, क्या है मिठास है। तो ये स्वीट स्वीट वाली जो चींटी है वो बड़ा गुणगान कर रहे थे, शुगर का गुणगान कर रहे थे, स्वीट का गुणगान कर रहे थे। अरे दूसरी कहती थी, दूसरी को तो कुछ उसको पल्ले नहीं पड़ रहा था, क्या एग्जैक्टली क्या आनंद है उसमें, जैसे भक्त कहते ना क्या आनंद आया, भागवत गला सुन रहा था तो बस रोमांच खड़े हो रहे थे, और जो मैंने आज वो ग्रंथ पढ़ा इतना आनंदित हो रहा था, क्या कीर्तन हो रहा था, ड्रेसिंग क्या था। हमें दूसरा पूरा ढीला ढाला भक्त है, उसको जो मर्जी बोलो उसको कुछ नहीं हो रहा है, उसका बिल्कुल क्या कहते हैं टेम्परेचर डाउन, बाकी का हाई टेम्परेचर है कृष्ण भावना में, सब चीजों में आनंद आ रहा है, प्रसाद खाने में तो और आनंद, आनंद तो ऐसे गिर जाता है वहां। तो फिर ये जो बोलती जा रही थी ऐसे वैसे, उन्होंने कहा सही में बहुत स्वीट है। उन्होंने कहा मैं आपके लिए भी लेके आई हूं साथ, आप मेरी बहुत प्रिय फ्रेंड हो ना, तो आपके लिए मैं शुगर कैंडी का एक ढेला ढेला लेके आया हूँ थोड़ा सा, आप इसको चखो ना। उन्होंने कहा दे दो मेरी जीवा में रखो। अभी इस दूसरी जो फ्रेंड थी चीटी मिस चीटी, उसने वो दे दिया और उसने खा लिया, जैसे खाया था इसमें तो कोई स्वीट नहीं, कुछ आनंद ही नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, सारे महाभक्त आनंदित हो रहे हैं, मैं खुद आनंद गदगद हो गई हूं, आपके लिए लेके आया और आपको कुछ आनंद ही नहीं आ रहा है, तो मुंह खोलो। जैसे डॉक्टर, मैं उस दिन मेट्रो में गया था मेरे अपना गले का कुछ दिखाने, हमारे अजय चैतन्य प्रभु है, तो मुझे एक डॉक्टर के पास ले गए, ENT हैंड ENT तो ENT थे। उन्होंने कहा प्रभु जी मुंह खोलो, तो उन्होंने अपना टॉर्च लिया, खोला मुंह और देखा अंदर क्या है, क्या रे बहुत बुरी सिचुएशन है आपकी, ये मेडिसिन खाओ एक महीने के लिए, बहुत कुछ खाओ। तो वैसे ही इस डॉक्टर ये दूसरी चींटी ने कहा मुंह खोलो क्या है दिखाओ दिखाओ, देखा कि अंदर नमक का वो क्या था ढेला। उसने कहा इतने दूर जा रहे हो प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा वहां। हमारी स्थिति ऐसी है, हम इतनी आसक्तियां लेके आए ना अपने साथ, अरे वो भक्त बनने से भक्ति में आनंद आएगा कि नहीं आएगा, मेरी जो पिछली जो हैबिट्स है अटैचमेंट्स है अट्रैक्शन है वो थोड़ा रुकता हूं, है ना। तो वैसे ही था वो चींटी के साथ नमकीन वाली, वो गई अपने साथ नमक का ढेला अंदर डाल के लाई, दिखाई नहीं दे रहा था बाहर से, वैसे हमारे साथ है, अटैचमेंट बाहर से दिखाई नहीं दे रही है, अंदर इतनी सारी आसक्तियां हैं, बहुत प्रगाढ़ है घुसी हुई है, हम कस पा रहे हैं। तो उसने कहा कैसे आपको स्वाद आएगा इसका, इस ढेले को बाहर कर दो और फिर क्या करो, ये नमकीन नहीं स्वीट स्वीट हनी या स्वीट क्या है स्वीट कैंडी उसको खा लो। तो उसके मुंह से जैसे डॉक्टर कुछ अटक जाए गले में, और हमारी स्थिति वैसी हम गले से बाहर नहीं निकलना चाहते अटैचमेंट को, फिर क्या है ऑपरेशन, फिर भगवान ऑपरेट करते हैं, भगवान ऐसे सिचुएशन में आपको डाल देते हैं कि आपकी अटैचमेंट को आपको न चाहते हुए भी त्यागना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। बेटर है पहले छोड़ दो, कष्ट कम होगा। लेकिन आपने किसी चीज को पकड़ा है और दूसरा खींच रहा है तो भी बहुत वेदना होती है, सहा नहीं जाए। आर ना सहे गोपीनाथ, भक्तिनाथ ठाकुर कहते अभी और सहा नहीं जा रहा है गोपीनाथ, जन्म मरण वाला बहुत कष्ट पा रहा इस जगत में। तो वही है, आप हमारी आसक्ति को नहीं छोड़ेंगे तो भगवान खींच रहे वहां से, फिर भगवान खींचे आप यहाँ खींचे, कौन बलशाली है? भगवान, भगवान सारे खींच लेते हैं, सब आसक्तियों को खींच लेते हैं। तो इसलिए है वो चींटी को आनंद नहीं आ रहा था नमकीन, तो वैसे हमने ना बहुत सारे नमकीन चीजें अभी भी रखी हैं, आज उसमें तो ये सब चीजें तो नहीं और ना फ्लेवर दे देती है, नहीं फ्लेवर, कितने सारे फ्लेवर्स हैं, ये साइट वो साइट, ये बुक वो बुक, ट्विटर, कितनी सारी चीजें हैं, इसमें सारा वैरायटीज ऑफ नमकीन भरे पड़े हैं। और इसी कारण से हमें भगवत भजन का जो स्वीटनेस है वो नहीं, मीठा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, टॉलरेट नहीं होता। भागवत क्लास टॉलरेट नहीं हो रही है ना, कीर्तन आजकल टॉलरेट नहीं हो रहा है, हमारी ऐसी स्थिति है एक्चुअली, बहुत दयनीय है। इसलिए भक्तों को बहुत गंभीर होना चाहिए और रियली इतना आनंददायी है कृष्ण भावना जिसकी तुलना नहीं कर सकते। हम एक क्षण के लिए रुक जाए ना और केवल सोचे कृष्ण भावना के बारे में, हम सोचेंगे अरे क्या अमृत दिया है मेरे हाथ में। इसलिए महाप्रभु कहते, कृष्णदास देवराज कहते हैं, अमृत छोड़कर हम विष का पान कर रहे हैं, उसमें हमें आनंद आ रहा है। तो इस प्रकार से हमें वो चींटी नहीं बनना चाहिए, हमें स्वीट चींटी बनना चाहिए। हाँ, स्वीट भी होना चाहिए और चींटी भी होना चाहिए। चींटी मतलब क्या? तृणादपि सुनीचे न, सुनीचे न, क्या बोला है वहा, सुनीचे न, नीचे, तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरि का सदैव कीर्तन, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। रूप गोस्वामी ने कहा, कृष्ण का निरंतर स्मरण करना और कृष्ण को कदापि न भूलना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि भौतिक अटैचमेंट, ये रस हम अपने साथ लेके आए हैं ना, उनको छोड़ दो ना, क्यों पकड़ के बैठे हो। और फिर देखो कृष्ण भावना का रस आपके हृदय में जाएगा और फिर आपको तद रसामृत तृप्त न अन्य शाद्रति क्वचित, उस रसामृत से आप तृप्त हो जाओगे और चीजों में आपकी कोई रुचि नहीं होगी। इसलिए बेस्ट है, कृष्ण भावना तब तक स्वीट नहीं लगेगी जब तक हम भौतिक आसक्तियों को पकड़े रहेंगे। जितना भौतिक अटैचमेंट को पकड़े रखोगे उतनी ही स्वीटनेस आपकी लाइफ की खत्म हो जाएगी, हमारे जीवन में आनंद नहीं होगा। मे बी आपका नाम आनंद दास हो सकता है, लेकिन आप कैसे हो? निरानंद दास। तो इसलिए बहुत आवश्यक है अटैचमेंट को त्याग। और भगवान का काम यही है, भगवान आदि पुराण में वर्णन आता है, कृष्ण गए अर्जुन के साथ, बहुत भूख लग रही थी भगवान को, भगवान ने कहा चलो चलो अर्जुन जरा ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा जाना है प्रभु, तो अर्जुन तो हमेशा, अर्जुन को भी रथ नहीं चलाते, रथ कौन चलाता है उनका? कृष्ण। ऐसे नहीं कि महाभारत के युद्ध के दिन ही कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे थे, उससे पहले जब भी कृष्ण हस्तिनापुर आते थे ये रथ चलाना पड़ता था उनको, फ्रेंड है ना, वो हमेशा सेवा के तत्पर रहते, तो रथ चलाते थे, यहां वहां जाते थे। एक दिन गए और उन्होंने कहा बहुत भूख लगी अभी चलते, तो ये गए तो बड़े नॉक किया किसी का घर, तो वो अंदर बैठा था, नोट गिन रहा था, लाला जी, मिस्टर लाला, लाला जी नोट गिन रहे थे और वो दिखाई दे रहा था कहां से, थोड़ा सा दरवाजा खोला देखा, अरे भगवान, कहते भगवान आप आए हो, दरवाजा नहीं खोल रहा है। तो लाला जी नोट गिनने में मग्न है, लाल नोट 1000 की सारी। लाला जी सो बिजी, तो भगवान को देखने के लिए टाइम, नो टाइम, टाइम नहीं है भगवान। तो उन्होंने कहा, अर्जुन ने सोचा क्या होगा इसका, हाँ भगवान साक्षात दरवाजे में खड़े हैं, हाँ तो उन्होंने कहा भगवान अभी क्या करें, भगवान ने सुना आशीर्वाद देता हूं, आशीर्वाद, हाँ वाद विवाद खत्म हो जाएगा।
तो आशीर्वाद दिया कौन सा? इसी प्रकार से जीवन भर धन काउंट करते रहो, बढ़ता रहे आपका जो धन है। अर्जुन तो आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए भगवान के बारे में समझना, इसलिए भागवत में जो पहला श्लोक है ना, उसमें कहा गया है मोहंति यत सुरया। भगवान को हम अपने छोटे क्षुद्र है ना बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते। अचिंत्य खलु ये भावा, वो अचिंत्य है, चिंतन शक्ति से परे है। अभी अर्जुन भ्रमित हो गए, यहां ब्रह्मा भ्रमित हो गए थे, हुए थे कि नहीं? शिवजी मोहिनी अवतार से भ्रमित हो गए थे। इंद्र एक छोटे से बच्चे ने क्या उठा लिया ना, छाल अम्ब्रेला की तरह गोवर्धन उठा लिया, वो भ्रमित हो गए। मोहंती यत सुरया, देवतागण भगवान के कार्यकलापों से मोहित हो जाते हैं। फिर अर्जुन की क्या बात है? तो फिर अर्जुन ने बड़े भ्रमित हो गए कि समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसा बोल रहे हो, जिसने आपको पूछा नहीं, आपकी ओर देखा नहीं, आपको धुतकार दिया है, और उसकी आप इतनी इतना ही कर रहे हो, ग्लोरीफाई को उसको दे रहे हो, बड़ा आशीर्वाद दे रहे हो। तो आगे चले गए, गए तो डिवोटी के घर गए। बेचारा भक्त, एक घर में गाय, कितने गाय? एक। भगवान आए, अरे अर्जुन के साथ आए, अर्जुन के सखा, बड़ा स्वागत किया उन्होंने, बुलाया। हाँ, और अपनी गाय का ना गरम दूध निकाला, गाय का दूध निकालते तो कैसे होता है, गरम होता है। अभी शहर के लोगों को क्या पता, उनको तो मदर डेयरी का दूध पता है, वो भी ठंडा। वो दूध निकाला और भगवान को दिया, अभी ऑफरिंग करने की आवश्यकता नहीं, सीधा भगवान के हाथ में ग्लास, और अर्जुन पी रहे, अर्जुन और दोनों पीते जा रहे हैं। फिर भगवान बहुत संतुष्ट हो गए, उस भक्त के गले मिले जो हरि नाम का उच्चारण कर रहा था। अर्जुन अभी सोचता है अभी क्या आशीर्वाद क्या देंगे, देखता हूं। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी ये जो गाय है ना वो भी मर जाए। अर्जुन तो सर फट रहा था, कहते हैं सबको समझ सकता हूं मैं, अपने द्रौपदी पत्नी को समझ सकता हूं, समझना बहुत कठिन है लेकिन उसको समझ सकता हूं, लेकिन कृष्ण को समझना टफ है, कठिन है। फिर आए, बाहर आए, प्रश्न आए, हम जैसे कुछ आप किसी भक्त का अननेचुरल बिहेवियर देखोगे तो बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं? तो वैसे ही था अर्जुन के साथ, नेचुरल सा नहीं था कृष्ण के लिए, अननेचुरल। तो आए, कहा अभी ठीक है, रथ रोको, पहले प्रश्न का उत्तर दो। कहा क्या प्रश्न है अर्जुन, बताओ। अभी तो ये विनम्रता से नहीं पूछ रहा है एक्चुअली, परिप्रश्न है ना, सेवया, उस भावना से नहीं हो रहा है, सीधा बताइए प्रश्न। आप ये ऐसा उल्टा उल्टा कार्य क्यों करते हो? वो बेचारा आपको देख नहीं रहा है, हाँ उसको आपने का बढ़ोतरी हो जाए धन की, और जो बेचारा जो भक्त है, एक गाय, इतने दूध पिलाया आपको, इतनी सेवा की, फिर भी उसको कहा कि आपकी गाय की मृत्यु हो जाए। हम भी देखते हैं ना, यार भक्ति में लगा ना, तब से कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, कभी शरीर ठीक नहीं रहता तो कभी मन ठीक नहीं रहता, कभी तो धन की प्रॉब्लम है, घर में बच्चे परेशान कर रहे हैं, पत्नी परेशान कर रही है। मुझे हमारे कल डिवोटी दिल्ली में गया था तो वो बता रहे थे, वो कह रहे थे एक बड़ा सरल है, किसी का भी भविष्य बता रहा, वो कह रहे थे वो हयात में रुके थे तो मैं गया उनसे मिलने, तो वहां ऐसे चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा, मैं एक बैंक में गया था इंडिया में, वो विदेश डिवोटी है, तो उन्होंने कहा वहां एक सिक्योरिटी गार्ड था, बड़ा ऑफिसर सा, उन्होंने कहा महाराज, हाँ ये ब्रह्मचारी है महाराज, आप स्वामी जी बताओ ना, हाथ देखते हो क्या? जनरली साधु को देख के एक ही नजर, एक ही चीज याद आती है, हाथ देखते हो क्या? हाथ में आप सब कुछ देखते हैं। तो उन्होंने कहा हाथ भी देखते हैं, तो उन्होंने बोला अच्छा बताओ तो क्या है? उन्होंने कहा देखो आपको यहां ना नौकरी करना अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत परेशानी है। कहते सही है। आपके बच्चे घर में सुनते नहीं, वो भी सही है। पत्नी के साथ बीच बीच में कुछ मन मुटाव होते रहते, कहते रियली सही है। अभी वो डिवोटी कल हम इतने हंस रहे थे, वो कहता है कि ये तो जनरल है, इसमें क्या भविष्य की बात है। तो वो आते हैं केनिया से, वो डिवोटी, तो जब आते हैं केनिया से अपने साथ मालाएं लेके आते हैं, जप माला ना एक्स्ट्रा रखते हैं, उनको पता है कई लोग ऐसे मिलते हैं, फिर ऐसी क्योंकि जो कॉमन चीज है वो सबको लागू होती है, ये सब क्या हाथ में लिखा हुआ है, नहीं माथे में लिखा है प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने कहा महाराज स्वामी जी उपाय बताओ, ये अपना पक्का, इनका पता है क्या, एक माला रहित रखते हैं हमेशा साथ, कई सारी माला है, जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम है माला देते, ये माला और एक मंत्र का जप करोगे ना आपका काम करना अच्छा लग जाएगा, पत्नी तुम्हारा सुनने लगेगी, बच्चे तुम्हारे अनुसार कार्य करेंगे, ऐसी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। तो उसको माला पकड़ाते हैं और वो दे देते हैं। तो यहां पे भगवान कहते हैं कि मैंने इसलिए उनको शाप तो नहीं, ये भी आशीर्वाद है, दोनों भी आशीर्वाद है। वास्तव में वो शाप था, वो क्या था, शाप था। हम सोचते हैं भौतिक धन, भौतिक संबंध, भौतिक जो भी रिलेशन आदि है उनमें बढ़ोतरी हो जाए वो हमारे लिए आशीर्वाद है, लेकिन भक्तों के लिए जो भी कृष्ण मेरे लिए प्लान रखे हैं उसको स्वीकार है, हमें अच्छा लगे या ना लगे वो हमारे लिए बून है, वो आशीर्वाद है। तो इसलिए वहां भगवान कहते कि मैंने वो व्यक्ति मुझे भूलना चाह रहा था, मुझसे दूर जाना चाह रहा था, मैंने ऐसी फैसिलिटी उसको दे दी कि और चाहते जाओ और दूर जाओ, फिर ना तुम कष्ट भुगतोगे, लेकिन ये भक्त मेरे बहुत क्लोज आना चाहता है, मेरे नजदीक आना चाहता है, लेकिन ये गाय बीच में है, इससे आसक्ति है ना, किसको गाय से किसी को भैंस से, है ना। जैसे वो तुकाराम महाराज की पत्नी थी, उनको एक डिवोटी थे तुकाराम, उनको उनकी पत्नी को एक भैंस मिली थी मैके से, वो हमेशा किसी का गुण गाती थी तो भैंस की गाती थी। उसको आसक्ति हो गई थी भैंस से, तो वैसे यहाँ उस भक्तों को गाय से आसक्ति थी, उन्होंने कहा ये आसक्ति भी खत्म हो जाए और वो पूर्ण रूपे ना मुझ पर निर्भर हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं ना, प्रभुपाद जब लखनऊ में थे उनका जो बिजनेस है वो खत्म हो गया एक प्रकार से, या फिर जो उन्होंने बड़ा फैक्ट्री खोला था वो जल गया या कुछ नुकसान हो गया, तो प्रभुपाद ने कुछ नहीं सोचा। भागवतम का श्लोक याद आया, हरिषे तद धनम क्षणे, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसका जो धन है उसको हरण कर लेता हूं, तो चाहे हमारा धन हरण हो या ना हो तो हमें हमेशा अपने जीवन में कृष्ण की कृपा को ही देखना चाहिए, ये भक्त का एटीट्यूड है। चाहे वो आपके आपको थोड़ा जैसे ऑपरेशन होता है तो थोड़ा दर्द होता है, परेशानी रहती है, तो लेकिन वो आपके हित के लिए है, नहीं तो ये शरीर त्यागना पड़ेगा, तो वैसे ही है ये ट्रबल्स, चाहे भगवान के द्वारा आ रही है, समझना चाहिए मेरी आसक्तियों को कम करने के लिए कृष्ण एक डॉक्टर के भांति काम कर रहे हैं, वो मुझे नीट एंड क्लीन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अटैचमेंट्स को काटते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे अटैचमेंट्स उनसे हो जाए, उनसे मतलब किन से, कृष्णा श्रीमद भागवतम, हाँ इन सब में भगवत के प्रति आसक्ति हो जानी चाहिए, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज श्री लोचनदास ठाकुर का आविर्भाव है, तो उनके बारे में कुछ अधिक प्राप्त नहीं होता, लेकिन उन्होंने बहुत बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है चैतन्य मंगल। चैतन्य मंगल इतना अमृतमय है महाप्रभु की लीलाओं का ग्रंथ, महाप्रभु के ऊपर कई सारे ग्रंथों की रचना हुई, सबसे पहले महाप्रभु के ऊपर ग्रंथ लिखा गया मुरारी गुप्त के द्वारा, जिसका नाम था चैतन्य चरिता महाकाव्य, फिर ग्रंथ लिखा गया वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा चैतन्य भागवत, और फिर जो दामोदर पंडित है वो मुरारी गुप्त का जो ग्रंथ है उसका जब रोज वर्णन करते थे तो एक डिवोटी लोचन दास ठाकुर वो बड़ा गंभीरता से सुनते थे, उनको सारे श्लोक याद हो गए संस्कृत ग्रंथ के, उनके आध्यात्मिक गुरु ने कहा कि ये तो संस्कृत में है महाप्रभु का चरित्र, आप क्या करो एक प्योर सिंपल बंगाली भाषा में लिखो। तो उन्होंने फिर पांचाली लैंग्वेज है बंगाली का एक प्रकार, उसमें उन्होंने चैतन्य मंगल की रचना की। मंगल का मतलब है ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियसनेस या शुभ, तो महाप्रभु का चरित्र बहुत शुभ है, मंगल है, प्योर है। तो फिर उन्होंने ये चैतन्य मंगल की रचना की और सबसे आखिरी महाप्रभु के ऊपर ग्रंथ लिखा कृष्णदास कविराज ने, जो कौन सा है, श्री चैतन्य चरितामृत। तो इस प्रकार से ये जो ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था राड देश में और कटवा के पास, और वो अपने माता पिता के अकेले पुत्र थे। 1523 में उनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता का नाम था कमलाकर दास और मदर का नाम था सदानंदी। और ये बचपन से ही इनको अपने ग्रैंडफादर के वहां पढ़ाई के लिए भेजा था। तो पहले बचपन में विवाह हो जाता था तो शादी हो गई थी उनकी, और लेकिन जब पढ़ाई के लिए गए तो वहां गौरांग महाप्रभु के भक्तों का उनको बहुत संग मिला, और महाप्रभु के भक्तों का संग के कारण महाप्रभु का चरित्र भगवत भक्ति में इतने मग्न हो गए। फिर उन्होंने अपने जो आध्यात्मिक गुरु है कटवा के पास श्रीखंड में श्री नरहरि सरकार, इनके द्वारा शिक्षा आदि प्राप्त की। नरहरि सरकार ने उनको कीर्तन आदि सिखाया, भगवत भजन कैसे करना है, शास्त्रों के बारे में सिखाया। नरहरि सरकार ने ही उनको आदेश दिया, कहा कि आप एक ग्रंथ की रचना करो। तो लोचनदास ठाकुर का जो ग्रंथ है चैतन्य मंगल, वो लोगों के कंठ में है, आज भी बंगाल में पुराने लोग मुखस्त हैं, गाते रहते महाप्रभु की लीलाएं। तो उन्होंने श्रीखंड जो गांव है, बहुत अच्छा छोटा सा विलेज है मायापुर के पास, अब फ्यूचर में जाते तो जाओ वहां एक पत्थर के ऊपर बैठकर उन्होंने पूरा ग्रंथ लिखा था अपना, एक वृक्ष के नीचे ऐसे, लोचनदास ठाकुर। तो लोचनदास ठाकुर के गुरु के पास वो हमेशा रहने लगे, तो माता पिता को परेशानी हो गया, अभी तो शादी हो गई है, बचपन में शादी हो गई थी ना, अभी तो थोड़े बड़े हो गए थे, अभी पत्नी को मिलना चाहिए जाकर। तो गुरु जी को कहा कि ये तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता इसका अपनी पत्नी का वगैरह, ये जाता ही नहीं वहां। तो एक दिन गुरु कहते जाओ, तुम्हारा विवाह हुआ है, तुम जाओ पत्नी से मिलने के लिए जाओ। अभी पत्नी जब छोटी थी तब देखा था जब विवाह हुआ था, अभी तो बड़ी हो गई होगी थोड़ी, तो उनको पता नहीं उसका फेस, उसका होलिया वगैरह। तो फिर एक दिन गए, गुरुजी ने कहा, तो वो गए गांव में, गए उस गांव में, गए अमेदपुर काकुटा जो विलेज है वहां गए। तो वहां अभी एक घर भी भूल गए थे, उसका घर कौन सा है, उनके पिता का आदि का। तो फिर गए तो एक एक माता जी जा रही थी सर में सारा घड़ा पानी का लेकर, उन्होंने कहा ओ माँ, कहते ना माँ गो, हे माँ, हे माता जी, पूछा इनका घर कहाँ है, तो उन्होंने कहा यहाँ जाओ, सीधा जाओ, लेफ्ट जाओ, फिर राइट ले लो। तो वो पहुंच गए, पहुंचे तो देखा कि जिनको ये माता जी कह रहे थे वो ऑलरेडी उस घर में पहुंच चुकी थी, और बूढ़ा पत्नी कौन है, तो वही थी जिनको कहते थे माँ या माता जी। उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी फिनिश, मेरा वैवाहिक जीवन खत्म, अभी ये मेरे लिए माता जी है। तो फिर वहां से वापस निकल पड़े, और उनका जो गृहस्थ आश्रम का जीवन शुरुआत ही नहीं हुआ था तभी उनका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस प्रकार से लोचनदास ठाकुर बहुत विशेष आचार्य है, उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर बहुत सारे सॉन्ग्स की रचना की है, उन्होंने दो ग्रंथ लिखे धामली और ये चैतन्य मंगल। चैतन्य मंगल में ऐसी लीलाएं हैं जो चैतन्य भागवत में नहीं है और चैतन्य चरितामृत में भी नहीं है, ऐसी महाप्रभु की विशेष लीलाएं, विशेष रूप से सन्यास के पहले विष्णुप्रिया आदि का संवाद, बहुत सारी लीलाएं हैं महाप्रभु की जिनका वर्णन बाकी जगहों में नहीं मिलता, जो इस ग्रंथ में हमें मिलता है जो लोचनदास ठाकुर के द्वारा दिया गया है। तो लोचनदास ठाकुर ने बहुत बहुत सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं। परम करुणा निधि गौर सुंदर की, श्री लोचनदास ठाकुर की, अति पावन श्री प्रभुपाद के, निधि गौर प्रेमानंद।